समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। रेणु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम डियर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम रेणु कटारिया एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट नेहा। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, reports, capsules, tributes and much more. And we will begin with the news headlines first, Neha. President Draupadi Murmu underlines the need for making the Indian economy more self-reliant and excel in export, urges citizens to make India the center of global business and knowledge.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी इसमें शामिल होंगे।
Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya says job creation and employment generation are key pillars of a strong and self-reliant India.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
Security forces arrest 6 militants in Manipur, a Pakistani intruder arrested in Jammu and Kashmir.
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में लाखों युवा सड़कों पर उतरे।
एंड IMD फोरकास्ट हैवी टू वेरी हैवी रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम एंड कच्छ टुडे। And Neha, the most looked forward to and the best segment, I think, जो हम परिक्रमा में बात करना चाहते हैं, Dateline India के बारे में, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. और आज हम बात करने वाले हैं International Literacy Day. जी बिल्कुल। Today we mark a powerful and important occasion, International Literacy Day, dear listeners. Live as if you were to die tomorrow, but learn as if you were to live forever. These timeless words by Mahatma Gandhi remind us that learning is not just a goal, it is a lifelong journey, one that shapes individuals, communities, and the world at large. Literacy is not just about reading and writing, it is a fundamental human right, the gateway to knowledge, skills, values, and the tools we need to participate fully in society. It promotes equality, fosters peace and helps us build respectful, just and inclusive communities.
आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ झाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ झाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, खोल दे पर, खोल
आइए याद करते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि 1820 के दशक में वैश्विक जनसंख्या का केवल 12% ही साक्षर था? रेनू, आप इस नंबर को समझ सकती हैं कि ये कितनी काफी कम संख्या है।
बिल्कुल, और उसके बाद तो पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ चुकी है।
बिल्कुल, 2022 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए यह संख्या बढ़कर 87% हो गई। वहीं कई विकसित देशों में साक्षरता दर अब 99% से ऊपर है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार ब्राजील में यह संख्या 93% तक पहुंच गया है। चीन ने 97% हासिल किया और भारत ने यह आंकड़ा 74% पर रहा है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। यह प्रगति उल्लेखनीय है लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, खासकर उन 739 मिलियन युवाओं और वयस्कों के लिए जिनके पास आज भी बुनियादी साक्षरता कौशल का अभाव है।
जी बिल्कुल। And you know what, Neha, this year International Literacy Day 2025 is celebrated under the theme Promoting Literacy in the Digital Era. Digital technology is changing how we learn, live, work and connect with one another. And while it offers exciting opportunities, especially for marginalized groups, it also brings new challenges. From access gaps to privacy concerns, digital surveillance and environmental impact, the digital work is not a guaranteed equalizer unless we make it inclusive, safe and empowering for all.
Is digital yug mein saksharta ka kya arth hai? पारंपरिक पढ़ने लिखने के अलावा डिजिटल साक्षरता का अर्थ है ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच, उसका मूल्यांकन करना और उसे बनाना, गलत सूचना और पूर्वाग्रहों से निपटना, सुरक्षित और नैतिक रूप से संवाद करना और बढ़ती जटिलता वाली दुनिया में गंभीरता से सोचना।
एंड यू नो व्हाट नेहा, एज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू इंश्योर दैट एवरीवन एवरीवेयर इज इक्विप्ड विद द स्किल्स टू थ्राइव। लेकिन अगर हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात भी करते हैं, यू नो, उसमें बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देयर इज एक्सेस टू अ वास्ट रेंज ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पर उसके साथ साथ बहुत जरूरी है हम माता पिताओं को और हमारे टीचर्स को, उन सबको ध्यान रखने की कि इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड लिमिटिंग एक्सेस फॉर सम स्क्रीन फटीग आ जाता है, पोटेंशियल फॉर आइसोलेशन हो जाता है एंड देयर इज रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एंड सिंस 1967 सितंबर 8 हैज बीन अ डे फॉर द वर्ल्ड टू यूनाइट इन रिकॉग्निशन ऑफ द पावर ऑफ लिटरेसी एंड इट्स पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स।
जी बिल्कुल रेनू, यह उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है लेकिन साथ ही यह भी सोचने का दिन है, क्या हमारी शिक्षा प्रणालियां पर्याप्त रूप से समावेशी हैं? क्या हमारी नीतियां प्रभावी हैं? क्या हम सचमुच लोगों को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं?
एग्जैक्टली। और अगर हम अवसरों की तैयारियों की बात करते हैं तो वी गो बैक अ लिटिल बिट इन द हिस्ट्री, वेयर थ्रू आउट हिस्ट्री इम्प्रूव लिटरेसी रेट्स हैव ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटल चेंजेस। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग द रेनेसांस स्टैंड्स एज अ पिवोटल एग्जांपल। Before Gutenberg's innovation, books were scarce and expensive due to manual copying. The printing press democratized knowledge, making books more accessible and fueling an intellectual renaissance. This era of enlightenment spurred a culture of learning, debate and innovation, laying the groundwork for the modern world.
बिल्कुल। साक्षरता का प्रभाव सामाजिक सुधार आंदोलनों तक फैला हुआ है। महिला मताधिकार आंदोलन में लिखित सामग्री ने महिलाओं को शिक्षित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। ऐतिहासिक प्रगति साक्षरता को व्यापक सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में दर्शाती है।
जी बिल्कुल। यू नो, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लिटरेसी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विच इज अनडिनायबल। द एजुकेशन विच इज बिल्ट अपॉन लिटरेसी स्किल्स ओपन स्टोर्स टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि हमने अभी डिजिटल मीडिया के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बताया था अपने लिसनर्स को। एंड रीजन्स दैट हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव लिटरेसी रेट्स हैव विटनेस्ड अ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड एनहांस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ।
जी उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने शिक्षा और साक्षरता में भारी निवेश किया और खुद को निम्न आय से उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। ये सफलता की कहानियां आर्थिक असमानताओं को दूर करने में साक्षरता की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है।
जी, एंड ऑन दिस इंटरनेशनल लिटरेसी डे, डियर लिसनर्स, आप लोग भी बहुत अच्छे से ये सुनिए कि लेट अस रीकमिट टू लिटरेसी एज अ कॉमन गुड एंड एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट, इक्विटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड रिमेम्बर, literacy is more than a skill, it is a lifeline. In a world that is changing faster than ever, the ability to learn, unlearn and relearn is our greatest strength. So today, let's celebrate literacy in every form and support efforts to ensure no one is left behind in our journey towards a brighter, more just, and more literate world.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले पटना चलते हैं
जी।
पटना मेट्रो का परिचालन परीक्षण दूसरी बार सफलतापूर्वक किया गया। पटना मेट्रो डिपो से 0 माइल और फिर भूतनाथ स्टेशन से 3.5 किलोमीटर तक स्पीड ट्रायल किया गया। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
पटना मेट्रो रेल का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके सुरक्षा परिचालन और मानकों को लेकर अब तक 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कल दूसरी बार मेट्रो रेल परिचालन का परीक्षण किया गया। इस दौरान 3 डिब्बों वाली मेट्रो रेल गाड़ी को छोटी दूरी तक चलाया गया। परिचालन के दौरान मेट्रो रेल की स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा संबंधी तकनीकी पक्षों की जाँच हुई। इससे पहले भी 3 सितम्बर को मेट्रो रेल सेवा का तकनीकी परीक्षण किया गया था। पटना रेल लाइन में ISBT मेट्रो स्टेशन तक रेल लाइन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं खेमनीचक स्टेशन का काम अभी बाकी है। मेट्रो रेल परियोजना के तहत पहले चरण में 6.5 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर मेट्रो रेल का परिचालन किया जाना है। इसमें मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशन शामिल है। इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। नगर विकास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने जाँच के बाद कहा कि पटना मेट्रो के अंतर्गत सुरक्षा मानक को लेकर हर पक्ष की गहराई से जांच की जा रही है और तकनीकी रूप से सुरक्षित होने के बाद ही मेट्रो परिचालन शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा था, हालांकि तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मेट्रो रेल सेवा के शुरू हो जाने से पटना वासियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रतिदिन लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम के लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। इसके मद्देनजर लोगों को मेट्रो रेल सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। मेट्रो रेल के डिब्बों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसमें पटना शहर के प्रमुख विरासत स्थलों, गोलघर, महावीर मंदिर और मधुबनी चित्रकला से सजाया गया है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
और नेहा, पटना से हम चलते हैं सीधे गुजरात। In Gujarat, the business community has thrown its weight behind the recent changes to the Goods and Services Tax, GST regime, marking a strong endorsement of the government's efforts to spur industrial growth. Welcoming the changes as proactive and transformative, the industry leaders, entrepreneurs voiced optimism for a simplified and growth-driven business environment in the state.
Industry leaders in Gujarat have unanimously welcomed the reforms, describing them as a positive step which will help drive demand and simplify local business processes. The chairman of Gujarat Ice Cream Association and managing director of Sheetal Cool Products Limited, Bhupat Bhua, said it will benefit all the traders as well as end-to-end customers. Talking to Akashwani, the textile trader from Surat, Atul Mohta, said the reduced GST rates have given a relief to all the small textile traders as well as consumers.
Surat mein bahut hi zyada khushi ka mahol. इस हिसाब से भारत सरकार ने दीपावली से पहले दीपावली का जो गिफ्ट दिया है, टेक्सटाइल में जो स्लैब कम कर दिए, 5% और 18% दो ही स्लैब रखे हैं, उससे पूरे देश के सब वर्ग को खूब फायदा हुआ है, सभी को महंगाई से राहत मिली है।
पवन अग्रवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ऑल्सो वेलकम द मूव एंड थैंक द गवर्नमेंट फॉर दिस डिसीजन। इंडस्ट्री हेड्स एक्सप्रेस कलेक्टिव कॉन्फिडेंस दैट द न्यू GST रेजिम विल नॉट ओनली रिड्यूस द रेगुलेटरी हैसल्स बट ऑल्सो गिव गुजरात अ कॉम्पिटिटिव एज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Government's proactive approach signals strong partnership with the business community, ensuring continued growth and prosperity for the state. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
अब बारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदाओं और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सिद्धिपीठ कुरूड से मां नंदा की ऐतिहासिक डोली को कैलाश के लिए रवाना किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य देवी की पूजा करना और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करना है, जो कि स्थानीय लोगों की अटूट आस्था को दर्शाता है। यात्रा से जुड़ी अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
उत्तराखंड के कुरूर गांव को मां नंदा का मायका माना जाता है और कैलाश को उनका ससुराल। हर साल अगस्त सितंबर में होने वाली ये एक वार्षिक यात्रा है जिसके तहत कुरूर के नंदा सिद्धपीठ मंदिर से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए रवाना होती है। मां नंदा की डोली को कैलाश भेजने की ये परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है और इसे देवी के मायके से ससुराल विदा करने के रूप में देखा जाता है। अगस्त सितंबर के माह में चमोली जिले के पिंदर घाटी में आई आपदा के बीच विपरीत परिस्थितियों में भी स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा का आयोजन कर देवी से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस यात्रा में रिंगाल की छंतोलिया, स्थानीय देवी देवताओं के निशान और चौसिंगिया खाड़ू भी साथ में चलता है जो यात्रा के महत्व को दर्शाता है। इस कड़ी में सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला शोभा यात्रा के साथ सम्पन्न हुआ। इस दौरान माँ नंदा सुनंदा के मायके से विदाई के दौरान लोग भावुक हो गए। माँ नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा को देखने और की प्रतिमाओं की एक झलक पाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। नंदा देवी का ये ऐतिहासिक मेला नंद वंश के शासनकाल से अल्मोड़ा में मनाया जाता है। आज भी अल्मोड़ा के इस मेले में होने वाली नंदा सुनंदा की विशेष पूजा अर्चना के लिए चंद वंश के वंशज आते हैं। गौरतलब है कि कुमाऊं में लोग मां नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। उधर पिथौरागढ़ जिले में भादो महीने में हिल जात्रा पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये एक प्रमुख मुखौटा नृत्य है जो सीमांत की संस्कृति और विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। यह पर्व लोगों को एकता के सूत्र में भी बांधता है। इस अतीत की विरासत को देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं इस पर्व में इस्तेमाल होने वाले मुखौटे सीमांत चोर घाटी की वीरता की इतिहास को दर्शाते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
एंड नेहा, आपको पता है कि सरस आजीविका मेला 2025 चल रहा है एंड टुडे इज द फोर्थ डे विच बिगैन ऑन द फिफ्थ ऑफ दिस मंथ एंड इज विटनेसिंग ग्रेट एंथुजियाज्म अमंग विजिटर्स एंड एग्जिबिटर्स। सो वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट शिवांग।
The Mela is showcasing a vibrant display of culture, cuisine and craft from across India. It is bringing together more than 400 women entrepreneurs from self-help groups across India, showcasing their talent and creativity along with entrepreneurial spirit through nearly 200 stalls. The Mela is open daily from 11 a.m. to 9:30 p.m. and will culminate on the 22 of this month with Ishani Dhidhi Shivang for Parikrama, Delhi.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
एंड आई हैव सम ग्रेट न्यूज नेहा। इन द मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप, इंडिया वन द फोर्थ टाइटल बाय अ कन्विंसिंग 4-1 विन ओवर साउथ कोरिया इन एन एक्साइटिंग फाइनल एट राजगीर हॉकी स्टेडियम इन बिहार। विद दिस विन इंडिया हैव एंडेड द 8-year लॉन्ग वेट टू रिगेन सुप्रीमेसी इन द कॉन्टिनेंट। इंडिया हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 in Netherlands and Belgium. And business news ki taraf chalte hain. The benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. The Sensex gained 77 points or 0.09% to close at 80,787. Similarly, Nifty added 32 points or 0.13% to settle at 24,773.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
ऑन दिस वेरी डे इन 1897, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वॉज चार्ज्ड फॉर सेडिशन फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल इन हिज मराठी न्यूज पेपर नेम्ड केसरी।
दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन इंडियाज पोलिटिकल हिस्ट्री as it marked the criminalization of dissent as a grand spectacle of a political trial.
Tilak was charged for the publication of two texts, Shivaji's Utterances, a poem, and an unsigned report on the June 1897 Shivaji festival at which Tilak spoke.
In 1897, Chapeka brother shot dead two British officers, namely the collector of Pune, Mr. Rand, who was responsible for the plague measures, and a young military officer.
This incident caused intense indignation among the Europeans and in the British government of India. It was pointed out that the murders of the two officers were the direct result of the incitement caused by Tilak's speeches and articles.
Due to prosecution's narrow legal interpretation, the texts were reduced to mean incitement of feelings of disaffection.
After 6 days of litigation, the jury announced Tilak guilty and Tilak was sentenced to 18 months of imprisonment.
Incidentally, Tilak was imprisoned thrice under the sedition law by the British.
When the nationalists were waging a war against the colonial rulers, spiritualists lifted the morale of Indians and told the Western world about the greatest philosophy of Hinduism, thus garnering the support of the world for India's freedom.
One such spiritualist, Swami Abhidananda, was born on this date in the year 1866. He was a direct disciple of Swami Ramakrishna Paramhans. Swami Vivekananda sent Swami Abhidananda to the USA.
He went to the USA in 1897 as the head of the Vedanta Society of New York and preached messages of Vedanta and teachings of his guru. For about 25 years, he traveled far and wide to the United States, Canada, Mexico, Japan, and Hong Kong. After attending the Pan-Pacific Education Conference at Honolulu, he returned to India in 1922.
He also crossed the Himalayas on foot and reached Tibet, where he studied Tibetan Buddhism. He left for his heavenly abode on the 8th of September 1939, but his spiritual teachings continue to guide people on their spiritual journey.
Today is the death anniversary of Firoz Gandhi, who was a freedom fighter, journalist, and a parliamentarian. Firoz, who was born on 12th of September 1912 in a Parsi family, quit studies to take part in India's freedom struggle.
He was imprisoned in 1930 along with Lal Bahadur Shastri and was lodged in the Faizabad jail for 19 months. Soon after his release, he was imprisoned twice in 1932 and in 1933.
Firoz died in 1960 in Delhi.
बॉलीवुड गायक भूपेन हजारिका की आज जयंती है. उनका जन्म असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था. भूपेन हजारिका असम के गीतकार, संगीतकार, फिल्म मेकर और गायक थे. वह असमिया भाषा के लेखक और असम संगीत के अच्छे जानकार थे. इसके अलावा हजारिका को संगीत विरासत के रूप में मिला था. भूपेन हजारिका ने अपने आप को सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं रखा, वह इससे बाहर निकले और हिंदी पट्टी में भी छा गए. उन्होंने हिंदी में भी कई गाने गाए. अपनी मातृभाषा असमिया के अलावा हजारिका ने हिंदी, बांग्ला समेत कई दूसरी भाषाओं में भी गाया. 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें 2009 में असोम रत्न और इसी साल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2011 में पद्म भूषण जैसी कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. 2019 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई. भूपेन हजारिका को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न से नवाजा गया. यह सम्मान 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
आमी एक जाजा बार पृथ्वी आमाके आपन करेछे भूलेछि निजेर घर. आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर.
And very truly you have described Bhupen Hazarika Neha. He is also acknowledged to have introduced the culture and folk music for Assam and Northeast India to Hindi cinema at the national level. Aur jo hum ab jo next song hum sunne wale hain, it is a song that captured the sadness and despair of the film's protagonist Shanichari, played by Dimple Kapadia, with an intensity that lingers even today. Aur isiliye hum is gaane ko baar baar sunte hain aur baar baar sunne ka hamara man bhi karta.
दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए. दिल हुम हुम करे घबराए.
याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे सितारे जी एम दुर्नानी को। 8 सितंबर 1919 को पेशावर में जन्मे दुर्नानी साहब और 8 सितंबर 1988 को इस दुनिया से विदा हुए, यानी उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही एक ही दिन पर आते हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही हिंदी सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक बन गए।
And today we are paying tributes to Kunakuri Vaidyanathan, who was an Indian classical music violinist and music composer. He was awarded the prestigious Padma Shri title by the Indian government, Sangeet Natak Akademi Award by the Sangeet Natak Akademi in 1993, and the Karnataka Issa Ignani Award. He has also won the Best Music Director Awards for his background scores for films. So let's listen into this beautiful Karnataka instrumental played by Kunakuri Vaidyanathan.
बिहार में जन्मे हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधाकृष्ण की जयंती है। उन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी से की, लेकिन आगे चलकर उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी लिखा, हास्य व्यंग नाटक एकांकी पर भी उनकी कलम ने लोहा मनवाया और बच्चों के लिए भी उन्होंने खूब मन से लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामलीला, सजला, गेंद और गोल, गल्पिका, फुटपाथ आदि। राधाकृष्ण रांची में एक समाज कल्याण विभाग की पत्रिका के संपादक भी थे। इनमें वे चुटकीले व्यंग लिखने की अद्भुत शक्ति थी।
Today we are also remembering James Charles Rogers, who was an American singer, songwriter and musician who rose to popularity in the late 1920s and widely regarded as the father of country music. He is best known for his distinctive yodeling, and the song that we are going to listen here is so much more in purity and such a simple song sung by Jimmy Rogers, Waiting for a Train.
All around the water tanks, waiting for a train. 1,000 miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a brakeman to give him
a... आज आशा भोसले का जन्मदिन है। आशा भोसले का करियर 80 साल से अधिक समय से चला आ रहा है और इसमें उन्होंने 11,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने महज 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। आशा भोसले ने हिंदी फिल्मी गीतों के अलावा गैर फिल्मी गाने, गजल, भजन और कवालियों में भी बखूबी गाया है। 1997 मई आशा जी पहली बार भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गई। आइए सुनते हैं उनका।
And renowned for her soprano voice range and often credited for her versatility, जो कि हमने गाना सुनी लिया है आइए मेहरबान, but when we listen to the bhajan तोरा मन दर्पण कहलाए, it reveals Asha's unmatched versatility and dynamic range, showcasing her ability to transition from breezy numbers to devotional themes alongside her mastery of breath control, resonance and precise vocal placement to deliver a truly inspirational and heart-touching performance. This song, known for its spiritual depth and spiritual inspiration, perfectly highlights the profound emotional expression and ethereal beauty of Bhosle's voice.
भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं आशा जी को राष्ट्रपति द्वारा 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया।
रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी चुप जाएगी पहलू में बिरहा की सुई हुई। रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी चुप जाएगी पहलू में बिरहा।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और रीनू कटारिया को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।